question.
Only me? बाबा को ठंडी लगती है कि नहीं लगती?
नहीं, दादा को लगता है, दादा को
बाबा को लगती है, जब बच्चों को लगती है
तो बाबा को ना तो ठंडी लगती है ना तो गर्मी लगती है, ना तो वो खाता है ना तो कुछ पीता है, वो निर्लेप है, कर्म भी न्यारे होकर करता है। तो कल की मुरली हम रिवाइज करेंगे, संडे की मुरली है 15 मार्च 1999 की मुरली है, शांतिवन में चली गई। क्या कहा उसमें बाबा ने?
राजा बच्चे, राजा जी अर्थात राजा बच्चे,
परमात्मा प्यारे और राज दुलारे, परमात्मा प्यारे और राज दुलारे बच्चों को देखकर बाबा हर्षित होते। वहां से टॉपिक चेंज हुआ, राज दुलारे अर्थात राजा, राजा अर्थात स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजयोगी, तीन शब्द है, एक राजा, एक राजयोगी और एक स्वराज्य अधिकारी। बाबा ने राजा की क्वालिटीज कुछ गिनाई, एक है रूलिंग पावर और दूसरी कंट्रोलिंग पावर, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में ठीक है, ठीक है, वो दूर हो जाता है। एक है रूलिंग और एक है कंट्रोलिंग, रूल करना अर्थात शासन जो राजा करता है, कंट्रोल कोई भी, कंट्रोल अर्थात वश में करना, काबू में करना, नियंत्रण में करना, जिसमें संयम आता है, कंट्रोल करने में संयम से ज्यादा संबंध है, रूल करने में शासन से ज्यादा संबंध है। वैसे देखा जाए तो संसार में दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, एक शासन करना और एक काबू में करना, वश में करना, नियंत्रण में करना। तो प्रश्न एक है यहां पर कि जो राजा है उसकी क्वालिटीज क्या क्या, जो भी मुरली हम पढ़ेंगे मुरली के साथ साथ हमें उसमें से कुछ चिंतन बिंदु निकालने हैं। एक है मुरली पढ़ लेना, समझ लेना, याद कर लेना, पर उसके आगे की जो स्टेज है वो है चिंतन करना, मनन करना। तो बाबा ने कहा, बाबा परमात्मा प्यारे राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं, सभी राजा हो, राजा अर्थात राजा की परिवार, एक तो राजा, एक स्वराज्य अधिकारी और तीसरा राज योगी। तो एक राजा जो होता है उसमें कौन से गुण होते हैं? राजा रहमदिल होगा। हाँ, अच्छे अच्छे राजा कौन हुए भारतीय इतिहास में?
सर्वप्रिय होता
श्री राम भाई, अच्छे अच्छे राजा कौन हुए भारतीय इतिहास में द्वापर युग से अब तक? सम्राट, सम्राट अशोक, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, बिंबिसार, वो तीन,
राजा राम मोहन राय,
शिवाजी, राजा राम मोहन राय, वो एक तरह के राजा नहीं थे, वो तो तब तक ब्रिटिश का ये हो चुका था, वो सोशल रिफॉर्मर है, समाज सुधारक, सती प्रथा और वो सब,
अकबर,
अकबर, हाँ अकबर भी है, और जितने मुसलमान शासक है उनमें से अकबर एकमात्र शासक ऐसा है कि जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों का सम्मान प्राप्त है।
सब बात में क्या लेकर पहले बहुत कुछ किया
जो भी है, परंतु मुसलमानों में वो एकमात्र है। हम द्वापर से शुरुआत से चालू करो, सबसे पहला सम्राट भारत का कौन है?
चंद्रगुप्त
मौर्य, सबसे पहला सम्राट। विक्रमादित्य तो बहुत बाद में आया, विक्रमादित्य है 56 BC क्राइस्ट के 56 साल पहले, जो तारीख यहाँ पे इतिहास जो देता है। बाबा तो इस इतिहास को मानता ही नहीं, बहुत सारी चीजें बाबा मना करते
हैं,
क्योंकि भारत अनेक जनपदों में बटा हुआ था, 16 जनपदों में भारत बटा हुआ था। इसके लिए सबसे पहला कार्य जो किया चाणक्य ने किया कि एक संगठित भारत, अखंड भारत का निर्माण किया, सबसे पहले बार नंदों के शासन को उखाड़ फेंका और मौर्य शासन की स्थापना की। तो मौर्य शासन में सबसे पहला सम्राट जो था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंबिसार, उसका बेटा अशोक, ये तीन ही सबसे पावरफुल शासक हुए। उसके बाद जो भी शासक हुए मौर्य वंश में, सम्राट अशोक के बेटे और उसके पोते, वो जो भी थे सभी कमजोर शासक थे। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर वहां नहीं थी, इसके लिए मौर्य वंश का पतन हुआ कुछ समय के बाद। ये पहले तीन ही शासक जो थे शक्तिशाली थे, और उसके बाद के जो शासक है वो कमजोर थे, और मौर्य वंश का वहां पतन हो गया। तो हमारा प्रश्न है कि एक अच्छे शासक में कौन से गुण होने चाहिए? तो एक तो रहम दिल बताया, दूसरा
प्रशासन
उनका बहुत शक्तिशाली था, सबसे ज्यादा शक्तिशाली चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन था। इसके लिए मौर्य वंश को सारे भारत में फैलाया उसने सबसे ज्यादा, और उससे भी ज्यादा फैलाया सम्राट अशोक ने। जो कलिंग एक जगह थी वहां पर अभी भी है, कलिंग उड़ीसा में, वो एक अशोक चंद्रगुप्त मौर्य भी उसको जीत नहीं पाए जो सम्राट अशोक ने जीता। तो शौर्य, शक्तिशाली,
उसके अपने एथिक्स थे, अपने सिद्धांतों पे चलता,
सिद्धांतों पे चलता था, आदर्श थे, और
अपने सिद्धांतों को कभी क्रॉस नहीं किया,
कभी क्रॉस नहीं किया,
सहयोग
से और डिसीजन मेकिंग पावर थी उनमें, निर्णय शक्ति। ये जितनी हम जो शक्तियों का गुणगान करते हैं वो सारी शक्ति एक राजा में होती है, शासन करने की कला होती है उसमें। अत्याचार कभी नहीं करता है, न्याय के प्रति न्यायप्रिय होते, समदर्शी होते, प्रियदर्शी होते। सम्राट अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है, उसका एक नाम ही है प्रियदर्शी, समदृष्टि, समान दृष्टि से सबको देखने वाले। तो पहले ये तीन शासक हुए, उसके बाद में विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य जो है वो भी एक महान शासकों में गिना जाता है। पृथ्वीराज चौहान, हिंदू शासकों में अंतिम हिंदू शासक, पृथ्वीराज चौहान की हार, वहां पर
मुस्लिम का
राज्य आरंभ। बस तराइन युद्ध वन एक पहला और दूसरा, तराइन का दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज की हार, और तब से मुस्लिम शासक भारत में चालू हुआ। उसके बाद में एक के बाद एक जो भी आते गए। मुस्लिम शासक में भी एक फीमेल शासक थी, रजिया सुल्तान, वो भी एक बहुत ही शूर शक्तिशाली शासक थी, पर चार वर्ष चला बस उसका, ज्यादा नहीं चला उसका। तो एक राजा की क्वालिटीज में और क्या कहेंगे हम, ये भारत के महान शासक है शिवाजी महाराष्ट्र में, वो भी एक महान शासक में गिना जाता है। टीपू सुल्तान महान शासकों में गिना जाता है। तो ये जितने शासक है सारे रूलर वो सभी शक्तिशाली थे, अपने उनके कुछ इथिक्स थे, अपने कुछ नियम थे, अपनी कुछ मर्यादाएं थी, और इसी कारण से वो राजा बने रहे और उनका नाम है इतिहास में। तो बाबा हमें कह रहे हैं राजा एक शब्द है, दूसरा शब्द है स्वराज्य अधिकारी, स्व का जो राज्य है उस पर अधिकार। बाबा ने कहा तुम डबल अधिकारी हो, अभी भी और भविष्य में, इसके अनुभव भी हो, ये प्रश्न है मुरली में। तीसरा है राजयोगी, राजयोगी अर्थात जितने योग है संसार में उसमें जो राजा है वो है राजयोग, और उस राजयोग की साधना करने वाले तुम हो राजयोगी। तो हम है राजा, हम है राज्य राजयोगी और स्वराज्य अधिकारी। बाबा ने प्रश्न पूछा ये जो स्वराज्य है ये अखंड है, तुम्हारा स्वराज्य जो है वो अखंड है या नहीं है? अखंड स्वराज, अविभाजित स्वराज, और वो क्यों नहीं? ओरिजिनल संस्कार और द्वापर युग के अब तक के संस्कार, माया के आने का साधन कौन सा है? द्वापर के अब तक के संस्कार, ये माया का साधन है वार करने का। अगर ओरिजिनल संस्कार आदि अनादि संस्कार उसमें अगर स्थित है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु ये जो बीच के संस्कार इस वजह से ही क्या होता है अखंड स्वराज्य नहीं है। उसको बाबा ने गिनाए कौन कौन से वो संस्कार है, छह बताए टोटल अगर गिने तो। एक तो आलस, दूसरा अलबेलापन, आलस एक ही व्यर्थ। व्यर्थ में कैटेगरीज बताई बहुत सारी। एक है सबसे पहला सोचना, दूसरा
बोलना,
बोल सुनना और सुनाना, तो सुनना और सुनाना तीन हो गए। चौथा आलस अलबेलापन, वो तो बोल दिया, और टाइम वेस्ट, व्यर्थ समय गवाना। और एक उसमें जो कहा बाबा ने निगेटिव, जो उसमें आई जाता है। तो ये सारे क्या है, इन छह संस्कार जो बताए, इनके वजह से क्या हो रहा है, इंटरफियर कर रहे हैं ये माया, इनके वजह से आक्रमण कर रही है। छह बताए, छह में से हम एक एक लेंगे। सबसे पहला व्यर्थ सोचना। व्यर्थ कब सोचता है व्यक्ति, जब उसके पास कोई काम नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, और
कुछ गलत हो रहा है उसको देख के भी आते।
अच्छा, कुछ व्यर्थ देखा, उसके बाद में व्यर्थ सोच चल, और
किसी को खुश देख के भी,
किसी को खुश देखकर ईर्ष्यावश, ईर्ष्या को। फिर
जयंती दीदी बोले थे व्यर्थ जय में दूसरे को देखा तो व्यर्थ चलेगा।
व्यर्थ
जय मैंने दूसरे को देखा, दूसरे
तो व्यर्थ सोचने के कारण ये है। और भी कुछ व्यर्थ सोच, अर्थात सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, सत्य अनित्य, सत्य असत्य, नित्य अनित्य, सार असार, ये सारे जो प्रश्न अध्यात्म के प्रश्न है, ये अभी के ही प्रश्न नहीं है, द्वापर युग से जो भी अध्यात्मवादी है उनके प्रश्न है। सत्य क्या, असत्य क्या, नित्य क्या, अनित्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, ये सारे प्रश्न। तो प्रश्न हमारा है व्यर्थ क्यों चलता है। हमने देखा कि दूसरों को देखने से जीवन में कोई महान लक्ष्य नहीं, तो व्यर्थ बहुत है। फिर
इच्छा भी होती है कुछ देने का,
बहुत सारी इच्छा है तो व्यर्थ है। सबसे महत्वपूर्ण दो वजह से चलता है व्यर्थ, किसी का बोल और किसी के व्यवहार, किसी व्यक्ति के बोल और किसी व्यक्ति का व्यवहार। अगर किसी ने कुछ बोल दिया, अगर किसी को कहो कि ये मुरली है इसके ऊपर चिंतन करो, तो सबसे पहला कहते हैं हमारा चिंतन, हमको नहीं आता है चिंतन विंतन करना, हमारा होता नहीं चिंतन। पर अगर किसी ने कुछ कह दिया तो रात भर चिंतन करते उसके बारे में, उसको और खींचते हैं, ये कहां से आई शक्ति, अब ये बताओ। किसी ने कुछ गलत व्यवहार कर दिया, किसी ने बोल दिया भाई तुम ये क्या है, ऐसा थोड़ी होता है, तो कितना उसका चिंतन चलता है रात भर। हाँ हाँ, वो पर चिंतन की शक्ति आ गई ना, पहले क्या बोल रहे थे कि चिंतन तो हमारा होता नहीं है, ये मत बताओ हमको, बाकी जो करना करो, बस कुछ सुनना है तो आके बैठ जाएंगे।
इंटरेस्ट
तो दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, जहां समर्थ संकल्प नहीं है वहां स्वतः ही व्यर्थ है। समर्थ का अभाव ही व्यर्थ है, समर्थ है नहीं इसके लिए जो है वो व्यर्थ है। तो व्यर्थ सोचने से मुक्त होने के लिए सबसे पहले वहां पर समर्थ को लाना पड़ेगा, जो ज्ञान के विचार में रहते हैं। आज के मूल्य में है एक वाक्य, उनके बोल भी कैसे होते हैं, वैसे ही होते हैं जो ज्ञान के विचार में रहते हैं। तो समर्थ संकल्प के लिए या व्यर्थ से मुक्ति के लिए सबसे पहले प्रकाश को लाना पड़ेगा। अगर व्यर्थ अगर अंधकार है, व्यर्थ से कितना भी लड़ो वो नहीं जाएगा। तलवार लेकर आए और कोई सोचे कि इस कमरे में जो अंधकार है मैं इसको बाहर निकालता हूं, पूरी सेना लेके आए, एक कमरे में अंधकार बैठा हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए नहीं निकल सकता। वहां किसको लाना पड़ेगा, प्रकाश को लाना पड़ेगा। पर्याप्त है एक छोटा सा दिया। तो अगर मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान है तो वहां पर समर्थ संकल्प लाने पड़ेंगे। समर्थ संकल्प कहां से मिलेंगे, मुरली से। वो ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा, अनुभव की गुह्यता की प्रयोगशाला, याद है ना कल का वरदान, अनुभव की गुह्यता की प्रयोगशाला में वहां बैठकर कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके सिवा नहीं होगा। गहराई में जाना पड़ेगा तो ही होगा, केवल मुरली पढ़ लिया या सुन लिया उससे तो कुछ नहीं होगा, या कोई क्लास सुन ली या कितनी भी अच्छी क्लास हो उससे कुछ होने वाला नहीं, जब तक हम स्वयं कुछ नहीं करते तब तक। ऐसा कोई धक्का मिलना चाहिए इधर कि हमारी अपनी प्रोसेस चालू हो जाए, प्रक्रिया चिंतन की, कि उसमें क्या है। तो व्यर्थ सोचना ये सबसे पहला माया का वार। बाबा ने 6 बताए कि ये संस्कार है, इसके लिए अखंड राज्य नहीं है। सबसे पहला व्यर्थ सोचना, व्यर्थ सोचने से मुक्त होने के लिए समर्थ लाना पड़ेगा। ओके, दूसरा था व्यर्थ टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट करना। टाइम भी वेस्ट कौन करता है, उसमें एक वही कारण है कि जिसको लक्ष्य नहीं है जीवन में, यहां आ गए बस रोटी कपड़ा मकान मिल गया, सेवा मिल गई, अमृत वेला कर लिया, मुरली सुन ली, हो गया पूरा खत्म।
कोई टेंशन है
अभी इसका, कुछ टेंशन और दूसरा कोई है नहीं, बाल बच्चे कोई नहीं है, तो ये कोई पुरुषार्थ नहीं है, इसे पुरुषार्थ नहीं कहा जाता, ये तो साधारण लाइफस्टाइल है, बीके लाइफस्टाइल सभी कर रहे। बाबा ये नहीं चाहता, बाबा तीव्र पुरुषार्थ चाहते, लक्ष्य बहुत ऊंचा चाहिए। लक्ष्य जब तक ऊंचा नहीं रखेंगे कुछ नहीं होगा। कितने सारे न्यू ईयर आए और चले गए, अभी फिर आ रहा है, पर साथ साथ माया भी लेकर आता है ठंड की। जनवरी मास में सब कुछ कर सकते हैं, पर साथ साथ ये भी है। पांडव वन में देखो तो वैसे तो कितना जल्दी आ जाते हैं लोग, पर जब ये सीजन रहता है तब थोड़ा कम रहता है ठंड। तो टाइम वेस्ट कहां कहां करते हैं ब्राह्मण, प्रश्न ये है, कहां कहां व्यर्थ गवाते हैं समय,
ज्यादा मोबाइल में करते हैं।
सबसे पहले तो साधन मोबाइल, मोबाइल में इंटरनेट, इंटरनेट में व्हाट्सएप और
ट्विटर, फेसबुक,
ट्विटर फेसबुक सोशल नेटवर्किंग सारे साइट्स, और ये मेल इधर से उधर करना और वो मेल उधर से उधर करना, और
ट्रांसफर होता है बस करना,
कल्याण की भावना से। और
अभी नया आया वो ऑनलाइन चल रहा है ना सब कुछ, ऑनलाइन शॉपिंग,
कौन सा,
हाँ सर शॉपिंग भी
ऑनलाइन शॉपिंग,
आज क्या रेट है कल क्या रेट,
हाँ
दूसरों की कमियां,
दूसरों की कमियां देख, तो साधन दूसरों की कमियां देखने में टाइम वेस्ट, और कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, कौन से डिपार्टमेंट में क्या चालू है, वो भाई पहले उधर था अब इधर क्यों गया, क्या कारण है, क्यों गया, कुछ तो हुआ होगा, वो क्या हुआ वो बताओ, ये अब तक यहां तक यहां क्या कर रही है, ये बहन अब तक यहां क्या है, इसको तो चले जाना चाहिए था, चलो पता लगाओ क्या है, बात क्या है, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहला प्रश्न ये, तुम्हें क्या करना है, जिसको जो करना है करने दे, हर एक वही कर रहा है जो वो करने आया था, इसके लिए उनको करने दे, तुम्हें वो करना है जो तुम करने आए थे, जिसके लिए लक्ष्य को बोझिल धूमिल नहीं होने देना है, उसको स्पष्ट रखना है, लक्ष्य हम आए किस लिए थे यहां पर, केवल सेवा करना हमारा लक्ष्य नहीं है, सेवा तो होती ही रहती है स्वतः ही, लक्ष्य है श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने का और तपस्या करने का। सेवा हम नहीं रहेंगे तो कोई दूसरा आ जाएगा, हम अगर ये सोच रहे हो कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं, हम अगर नहीं रहेंगे तो ये सेवा ही बंद नहीं हो जाएगी, अगर हटा दो ना तुम्हारे स्थान पर जो आएगा 10 गुना अच्छे सेवा होगी, इसके लिए संकल्प भी हटा दो कि हम है करके अच्छी हो रहे हैं सब सेवा, ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो अवसर मिला है, चांस मिला है भाग्य बनाने का, बस इसके लिए लक्ष्य को स्पष्ट रखना है, बार बार स्मृति दिलानी है, आए क्यों थे यहां पर, महान योगी तपस्वी करने आए थे और कोई लक्ष्य नहीं दूसरा। फिर उसके बाद और टाइम वेस्ट कहां होता है, एक तो साधनों में, दूसरों को देखने में और घूमने फिरने में,
दोपहर शाम को भोजन का,
फास्ट भोजन, भोजन ये बनाओ वो बनाओ, ये खाऊं वो खाऊं, इसने क्या बनाया उसने क्या बनाया,
नेचर पे
हाँ अलग अलग जो भी है, ये हो गया अभी वो हो गया अभी ये, नए नए ढूंढना, ये सब में भी बहुत समय जाता है, इधर उधर घूमना, इधर जाऊं उधर जाऊं, इसको मिलूं उसको मिलूं, किसने बोला मिलने, क्या जरूरत है, जितना आवश्यक है उतना पर्याप्त है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद
दोस्ती आजकल बहुत ज्यादा हो गई है।
हाँ, एक दूसरे गुटबाजी
जबरदस्ती मिस कॉल मार के हाँ समाचार पूछ लेते थे।
हमारे पास एक डॉक्टर आया करते थे, वो कहीं और पे आते थे, शांतिवन में जब भी आते थे उठते थे सबसे पहला फोन किचन में नाश्ता क्या है। उठते थे 7-7:30 बजे, पहला फोन सीधा किचन में नाश्ता क्या है। तो हमें और बाहर वालों में अंतर तो रहना चाहिए, यहां रहते आए क्यों थे, स्वाद लोलुपता, ये भी भोग विलास की ही प्रवृत्ति है।
आराम पसंद
जीवन, सोना, कई लोगों को सोना बहुत अच्छा लगता है, बस सोए रहो। कितनी हमारे पास बहनें आती है ओपड़ी में, क्या तकलीफ है, कितनी नींद आती है, इतनी नींद आती है बाद में, सुबह मुरली सुना दी, नाश्ता किया सो गए, दोपहर में उठे भोजन खाया फिर सो गए, शाम को कहीं सेवा में गया है और फिर सो गए, इसकी कोई दवाई हो तो देखो। नींद ही नींद, अरे नींद कोई लक्ष्य ही नहीं है कोई पुरुषार्थ का। तो क्या होता, तो और किसमें टाइम वेस्ट करते हैं ब्राह्मण, घूमना फिरना, खाना पीना हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी और सीरियल देखते देखते हाँ न्यूज देख लेते, और न्यूज चलते चलते कब सीरियल चालू हो जाता है पता भी नहीं चलता, और कब वो सब चालू हो जाता है एक के बाद एक के बाद, और वो सीरियल भी ऐसे होते हैं ऐसी जगह एंड करते हैं कि आगे क्या होगा, अब उत्सुकता।
भाई सुबह बता रहे थे कि मोदी की खबर सुनता था, उसके अच्छे दिन हमारे खराब आ गए।
सुबह उधर क्लास में ना देवेंद्र भाई, तो टीवी मोबाइल इंटरनेट ये मुख्य है, ग्रुप्स, कई कई बहनें हैं, एक बहन आई थी विदेश की, उसके 20 ग्रुप्स है, 20 ग्रुप में
एक भाई आया उसको 100 ग्रुप 100,
उसके नहीं है पर वो अलग अलग, मतलब कोई कॉलोनी के कोई सेंटर की बहनों के, बस उसमें वो करते रहते, वो जितनी बार देखना उसको बार बार देखना, चाहे छोटा भी कुछ हो एनर्जी को तो खींचता है। अच्छा, आपके लिए आपकी सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कुछ लेना देना नहीं है उससे, जरूरी नहीं है कि मुझे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है उसमें, फिर भी हम चाहेंगे कि वो देखे। ये सब एक प्रकार से माया है सारा, क्लासेस फटाफट भेजते हैं, खुद सुना भी नहीं है, कोई आर्टिकल है कोई ईमेल है बस भेजो, भेजने का अधिकार उसे ही है जिसने उसे सुना है और धारण किया है, कुछ तो उसने काम किया है, उसके सिवा उसको भेजना नहीं, चाहे कितना भी अच्छा आर्टिकल हो चाहे कुछ भी हो, बस भेजना, इधर भेजो उधर भेजो उधर भेजो इधर भेजो, इसी में लगे कुछ काम करने, कहाँ काम करने वाला है कुछ, और जिसको भेज रहे वो किसी और को भेज रहा है। वो थोड़ी पढ़ रहा है, हमको तो लग रहा है हम आगे जा रहे हैं, वो वहां से वहां वहां से वहां वहां से वहां वहां से वहां घूम रहा है बस। तो ये सब भी तो क्या है, ईमेल वाला, ईमेल तो जब तक अति महत्वपूर्ण नहीं है कुछ, किसी को कुछ भेजने की जरूरत नहीं है, वो ज्ञान का ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं आत्माओं को भेजना है जो ज्ञानी और तपस्वी है, अगर ज्ञान का कुछ भेजना ही है ऐसे ही कहीं भेज दो जिनको उसका क्या महत्व है। तो टाइम वेस्ट, तो पहला था व्यर्थ सोचना, दूसरा था टाइम वेस्ट, तीसरा है व्यर्थ सुनना। व्यर्थ सुनने में क्या क्या आएगा, किसी की निंदा, निंदा सुनने अच्छा लगता है, राहत और सुरक्षित महसूस होती है आत्मा को, किसी की निंदा हो रही है और हमें सुना है तो ठीक है, हम तो सेफ है, मतलब इससे ये पता चलता है हमारा कुछ नहीं है इनका हो रहा है, निंदा सुख उसे कहा जाता है, निंदा सुख, किसी की निंदा करने के बाद प्राप्त हुआ जो सुख है उसे खा जाता है निंदा सुख। तो व्यर्थ सुनना या इधर उधर की बातें सुनना, कहां क्या हो रहा है वो सुनना, किसने क्या किया, कहां क्या हुआ, किसका किसके साथ झगड़ा, ये सुनने में बहुत सारी चीजें आती है। फिर बाहर की न्यूज बहुत सारी सुनते रहना, या फिर क्रिकेट स्पोर्ट्स ये सब भी, तो सुनते सुनते कितने एक्साइटमेंट होता है उसमें, पता है ना।
अच्छा कल हम 10 बजे आते हैं ना वापस, तो मोदी जी उधर गए हैं रूस में, तो उन्होंने कहा कि वो देश के लिए इतना कर रहे हैं, हम लाइव नहीं सुन सकते 11 घंटे आपस में बात कर रहे हैं।
सुनना है वो सुनो, पर उससे ऐसा सुनो कि हमारा ज्ञान वर्धन हो, हमारा ज्ञान बढ़ जाए उसकी वजह से। प्रभावित होकर नहीं सुनना है किसी को, ऐसा सुनो कि वो जो ज्ञान जो नई बातें हैं वो हम धारण कर ले, हमको पता चल जाए कि ये ऐसी ऐसी संसार की आज भारत की ऐसी स्थिति है, उसके लिए सुनना है। सुनना है परंतु जिससे हमारा ज्ञान बढ़ जाए। अगर वही चीज हमको कहने को बोले कोई तो हम भी वही शब्दों में उसी अर्थ में कह सके अपनी भाषा में, इसलिए सुनना है ज्ञान बढ़ाने के लिए, वो ठीक है। फिर उसके बाद है व्यर्थ सुनना और फिर है सुनाना, एक ही साथ की कैटेगरी है सारी। सुनाना इधर क्या हो रहा है, किसने क्या किया, और हमारे पास अगर हमने किसी का सुना एक बार तो वो नेक्स्ट टाइम भी हमारे पास ही आएगा सुनाने के लिए। उसको पता है इसको इंटरेस्ट है, थोड़ा तो इंटरेस्ट है, उधर ही आएगा। फिर उसके बाद में है ये तीन हो गए, फिर उसके बाद में आलस अलबेलापन, आलस करना, इच्छा ना होना तीव्र पुरुषार्थ करने की, पोस्टपोन करना, आज नहीं कल करेंगे, चाहे उसमें बहुत सारी छोटी स्थूल कर्म भी आ जाएंगे, स्थूल कार्य भी आ जाते हैं उसमें, पुरुषार्थ के कार्य भी आ जाते हैं। जैसे अभी नया साल आने वाला है, उसकी एक होती है पहले से थोड़ा सा प्लानिंग करना मन में, ये बहुत अच्छा कार्य है, पर ऐसा लगता है अभी तो टाइम है और 2-3 दिन तो है, चलो बाद में देखेंगे, ऐसे करते करते करते, क्योंकि एक संकल्प करने के बाद जरूरी नहीं वो तुरंत वो प्रैक्टिकल में आ जाए, थोड़ा समय उसको माइंड में रखना होता है, उसका भी एक संस्कार बनाना होता है, कुछ समय वो उसके ऊपर चिंतन चलता रहे, धीरे धीरे स्वतः ही वो प्लानिंग हो। ऐसा नहीं कि बस अभी 31st है अभी रात को बैठे लिखने और 10 चीजें लिख दी बस जोश में आके, वो दूसरे दिन पता ही नहीं कहां गई, ऐसे का कुछ महत्व नहीं। कोई भी चीज को अगर धारण करना है तो उसको धीरे धीरे मन में सैचुरेट, मन में भरते जाना है, सबकॉन्शियस माइंड में भरना है उन चीजों को, और वो रिपीटेशन से होता है, बार 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 उसको दोहराओ, लिखो या मन में दोहराओ या सोचो तो होगा। तो आलस्य, और फिर है लास्ट छठवा
निगेटिव
नकारात्मक। बाबा ने ये 6 संस्कार गिनाए कि जो द्वापर से अब तक के संस्कार है, जो आदि अनादि संस्कार है वो मर्ज हो जाते हैं और यही मर्ज हो जाते हैं, यही माया के वार करने का साधन है। नकारात्मक हर चीज में निगेटिव, हर चीज में निगेटिव, कोई कुछ भी कर रहा है उसको निगेटिव दृष्टि से देखना, किसने कुछ भी किया, सेवा भी की, हाँ क्या है इसमें, ठीक है, हर चीज में निगेटिव बोलना या सोचना, वैसी ही वृत्ति बनती है। फिर चाहे कोई अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी उससे कुछ होने वाला नहीं है, करने में हमने बहुत कर लिया, कुछ फायदा नहीं है। हर चीज में कमेंट्स करना, टॉन्ट्स और कमेंट्स हर व्यक्ति के ऊपर, तो ये सब निगेटिव में आता है। तो ये 6 संस्कार है जिससे हमें मुक्त होना है। बाबा ने इसकी फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में विधि बताई है, ये क्या होते हैं, इमर्ज हो जाते हैं, इसके वजह से अखंड राज्य, अखंड स्वराज्य नहीं रहता है। विधि क्या बताई, नहीं हाँ वो भी एक लास्ट है, उसके पहले इसी पेज में इसी पर आगे, कौन से संस्कार इमर्ज करो, बाप के साथ का अनुभव, प्रैक्टिकल साथ का अनुभव, वो इमर्ज हो जाते हैं माया के साधन, तो स्वराज्य खंडित हो जाता है। अब इसके लिए 2-3 विधि बताई, सबसे पहली विधि तो ये है कि साथ का अनुभव, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव क्या करो,
प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल में इमर्ज करो। यह है छोटी सी बात परंतु निरंतर वो साथ में है इसका अनुभव।
जिधर देखो तू ही तू,
हाँ उस तरह जो भक्त भक्त जो कहते हैं वो। पर बाबा ने इसमें एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, जैसे तुम कोर्स में क्या बताते हो, परमात्मा सर्वव्यापी है तो उसकी शक्तियां उसके गुण सब जगह होने चाहिए, पर नहीं है। इसी तरह तुम कहते हो कि बाबा साथ है तो उसकी जो पावर है ऑलमाइटी ऑथोरिटी वो तुमको हर कर्म में अनुभव होनी चाहिए। कितना अच्छा उदाहरण दिया, अगर वो साथ है तो उसकी सारी पावर हमारे कर्म में स्व को भी और दूसरों को भी अनुभव हो। दोनों बातें मांग लीजिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान साथ है, बाबा साथ है, जहां हम जाएंगे वहां वो है। अभी कल कल या परसों दादी जानकी का क्लास हुआ था ना पांडव भवन में, आए थे इसमें कई लोग, टेबल हटाने को बोला था, दृश्य याद आ रहे हैं, पैर को दिखाया, याद करो उस दृश्य को बार बार, क्या बोला, हर कदम में पदम। तो हमारे हर कदम में पदम है, जहां भी हम जा रहे हैं वहां कुछ ना कुछ सेवा हो। जरूरी नहीं कि जितना ज्ञान हमारे पास है जबरदस्ती पकड़ के किसको पिलाना ही है, ये लक्ष्य नहीं है। ज्ञान केवल सुनाने से सेवा नहीं, हमारे वाइब्रेशंस भी बहुत कुछ काम करते हैं, हमारा अस्तित्व हमारा होना ये भी बहुत कुछ करता है।
ऐसी बात कर सुनना
उपस्थिति का, अभी कौन चाहता है सुनना, लोग आते हैं सबसे पहले उधर उधर पीस पार्क में भी सुन लेते हैं, ज्ञान सरोवर में भी सुन लेते हैं, फिर म्यूजियम में भी सुन लेते हैं, फिर पांडवन में आते हैं तो ऐसा पकड़ते हैं उनको कि अभी पूरा छोड़ेंगे ही नहीं, कि पता नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रहम तो करते हैं पर बड़ी बेरहमी के साथ कि पूरा के पूरा ज्ञान सुनाना ही है, पूरा आत्मा परमात्मा से लेके सब कुछ। अभी अभी सुन के आए हैं उधर, इधर भी सुन के आए, उधर भी सुन के आए। कोई कोई ऐसे हो जाते हैं, मुझे याद है नीचे शांतिवन में एक भाई है समर्पित, उसका भाई आया था लौकिक, जहां जा रहा है वही आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा। अगले तीन दिन सुबह बाहर निकलता था, शाम को ही अंदर आता था गेट के, बाहर ही घूमते रहता था। तो जरूरी नहीं है पकड़ के ज्ञान ही पिलाना है, पकड़ पकड़ के हमारे वाइब्रेशंस बहुत काम करते हैं, हमारी दृष्टि। हमने केवल कोई आए, हमने कुछ कहा नहीं, शुभ भावना रखी, आत्मिक दृष्टि रखी, कुछ अगर वो इंटरेस्ट दिखा है और पूछे कि बताओ तो हम बताएंगे। बताने वालों की कमी नहीं है, बहुत है ज्ञान सुनाने वाले।
मैं सर जब हम ग्लोबल आए थे भर्ती हुए थे, एक P1 एक बहन जी है, मतलब एक और एक एक आपके साथ जो डॉक्टर ने देखा, मतलब तीन को मैं देखा कि जैसे बहन जी आपके साथ जो है डॉक्टर ने, मतलब डेली साइलेंस पांडव जाना और युक्त होकर आना, एक वैसे मतलब बोले मेरे को देख रहे थे साथ में, वो किसी को कहना थे बात कर देते थे अगला सुन उसका, तो बहुत अच्छा लगा तीनों का वो देख करके।
तो जरूरी नहीं है कि पकड़ पकड़ के ज्ञान ही सुनाना है सबको, स्वरूप उसके हम बन जाए, एम्बॉडीमेंट। केवल दृष्टि से, केवल सकाश से, आत्मिक शुभ भावना से, उसके प्रति शुभ भावना की, ये भी बाबा का बच्चा बन जाए। इस तरह की हमारी भावना है, वो श्रेष्ठ भावना है। बस हमने कुछ कहा नहीं, उतना भी काफी है। तो कहा थे हम, बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव, प्रैक्टिकल अनुभव, ये मर्ज करो इसको। दुनिया को क्या चैलेंज करते हो बाबा ने, और एक प्रश्न पूछा, अखंड राज्य या अखंडित राज्य स्थापन करने वाले, खंडित अखंड राज्य स्थापन करने वाले। फिर बाबा ने यहां उसके बाद में डबल फॉरेनर से भी बात की, डिक्शनरी में से दो शब्द निकाल दो, समटाइम और समथिंग, समटाइम अर्थात कभी कभी, समथिंग अर्थात और कुछ और कोई बात, ये बाबा नहीं सुनना चाहते। मधुबन वालों को भी बोला हाथ खड़ा करो, और ये हाथ की क्या करो फिर, लाज, हाथ की लाज रखनी, जो हाथ खड़ा कर ले। फिर यहां फिर कंट्रोलिंग पावर, नेक्स्ट पेज पूरा, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। रूलिंग पावर का कुछ ज्यादा बोला नहीं बाबा ने, कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोल किस पे, स्व पे, कंट्रोल किस पे, कर्मेंद्रियों पर, और कंट्रोल किस पे, नीचे एक वाक्य है, संकल्प, संस्कार और तीसरा, हमेशा तो मन बुद्धि संस्कार होता है, इसमें बुद्धि नहीं है, इसमें बाबा ने समय दिया है। कंट्रोलिंग पावर अर्थात इन तीन चीजों पर कंट्रोल, संकल्प, संस्कार और समय। संकल्प फिर भी ठीक है, संस्कार उससे गहरा है और समय तो सबसे अधिक गहरा है। समय को कंट्रोल में करना, जब चाहो, जहां चाहो, जिस समय चाहो, जितना समय चाहो, लॉ एंड ऑर्डर पे चलाना मन और बुद्धि को। तो कंट्रोलिंग पावर को धारण करो। तो ये जो द्वापर युग के संस्कार जो बताए छह, इनसे निपटने के लिए सबसे पहला मार्ग बताया सात का अनुभव इमर्ज, दूसरा कंट्रोलिंग पावर को धारण, और तीसरा बताया दरबार लगा, जैसे कि ब्रह्मा बाबा ने दरबार लगा दिया। सेवा का संकल्प आया, सेवा में लग जाओ। परम धाम में जाना है तो परम धाम चले जाओ, सूक्ष्म वतन में जाना है तो सूक्ष्म वतन चले जाओ। स्टॉप कहा और स्टॉप, ये स्थिति हमको लानी है। हमारे जो मन के जो संकल्प है इनकी ही स्टडी करनी है, कहां ये जाते हैं, किधर जाते हैं, कहां भटकते हैं, स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। अभी अभी उसको बोलो ये, अभी अभी बोलो वो, इस तरह का हमारा ये हो जाए। ये है कंट्रोलिंग पावर। और सबसे महत्वपूर्ण कंट्रोल बाबा ने कहा जो इंद्रियों को कंट्रोल करना, और सबसे ज्यादा विचलित कौन सी इंद्रिया होती है,
आँख।
एक तो आंख और उस और भी एक दूसरी जिह्वा। कई लोगों ने कहा है कि जीभ को अगर कंट्रोल कर लो, जीभ को, तो 90 या 95% बाकी सारी कर्मेंद्रिया ठंडी हो जाएगी। जीभ अर्थात भोजन, टेस्ट, स्वाद, और एक है मुंह, वो है बोलना। वो अगर बाबा तो कर्मेंद्रियों में पांच कहते हैं, परंतु अगर हम संसार की थियरी में जाओ तो पांच कर्मेंद्रिय और पांच ज्ञानेंद्रिय है उसमें। एक है नाम, ये रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। रूप आंख से, रस जीभ, रस शब्द कान, स्पर्श और गंध, ये रसेंद्रिया। ये जो है उसमें से रस जो है, रस की जो कर्मेंद्रिया वो जीभ है। इसको जो जितना संयमित करता है उसकी सारी इंद्रिया स्वतः शांत हो जाती है। नहीं तो बस ज्ञान ले रहे, योग तो कर रहे, परंतु अगर जीभ पर कंट्रोल नहीं है तो योगी नहीं कहा जा सकता। तो कंट्रोलिंग पावर किस पे? स्वयं पे, इंद्रियों पर। यह है कंट्रोलिंग पावर। स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। जहां चाहो, जिस समय चाहो, जितना समय चाहो, मन बुद्धि को लगा सको, ऑर्डर में लगा सको। तीसरी विधि जो बताई, मतलब बाबा ने इसमें यह भी कहा कंट्रोलिंग पावर को धारण करो। एक एक संस्कार को करने की जरूरत नहीं है, ये बीज है कंट्रोलिंग पावर। दरबार लगाओ। कैसी लगाएंगे दरबार? पांच कर्म इंद्रिया और मन बुद्धि संस्कार। एक मुरली चली थी ना अभी संडे में, कुछ समय पहले। दरबार लगाओ, क्या देखा, व्यर्थ कितना देखा, व्यर्थ कितना सुना, व्यर्थ कितना बोला। जितना चाहिए उतना ही खाया कि बस खाते ही रहे दिन भर, जो मिलता गया वो खा ही रहे। पेट कभी भरा है क्या किसका आज तक? द्वापर से भरा है? कितना भी खिलाओ उसको, दो तीन घंटे के बाद फिर भूख लगती है उसको। भूख को जिसने जीता ना, वो एक उपलब्धि है एक्चुअली। तीन हो गए, तो ये तीन विधि बताए। फिर इनको मिले बाबा, बड़े भाइयों को होमवर्क दिया, वही होमवर्क फिर से 3 मास के लिए। कौन सा? अखंड, निर्विघ्न और अटल। क्या? स्वराज। ये हुआ वो हुआ वो कुछ नहीं सुनना चाहते, ऐसा स्वराज होना चाहिए। उसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डाली है, अगर कोई गलती करता है तो क्या करो, उसकी गलती को वायुमंडल में फैलाओ नहीं, वाइब्रेशन दो प्यार से और संभालो। ये बहुत अच्छी बात बोली है वहां पर। अगर कोई गलती करता है और हमने देखी तो हमको क्या इच्छा होती है, फटाफट इसको जितना फॉरवर्ड जितना ज्यादा लोगों को सुनाए उतना अच्छा लगता है। वो नीचे शांतिवन में एक बार जब दादी प्रकाश होनी थे तो एक सेवाधारी भाई नया नया आया था किचन में, तो वो जो इसका ये बंद बनाते हैं ना शक्कर का, क्या कहते हो
तो सर,
नहीं वो पानी और शक्कर चाशनी, तो वो रात में बना के रखी थी। अब उसको वो तो सुबह सुबह आ गया 3-3:30 बजे, उसको लगा पानी है क्या, वो पूरा इतना बड़ा उसमें बना के रखा था, उसने पूरा फेंक दिया वो। उसको उसको क्या पता वो क्या है करके, उसको लगा पानी है, नया नया था। और फिर उसको पता चला ये मेरे से क्या हो गया और सब जगह पता चल गया, तो इतना डर गया वो, इतना डर गया कि अब क्या होगा मेरा, अब तो सीधा इधर उधर इसके पास न्यूज जाएगी, इसके पास सब जगह फैल जाएगी। और वैसा ही हुआ, इधर उधर फैल गई। और फिर बाद में उसको 9 बजे पता चला प्रकाश मेरी दादी ने कॉटेज में बुलाया क्योंकि वो बहुत बड़ी थी वो ये जो था ना, और वो इतना पूरा, तो वो इतना डर गया अभी क्या होगा मेरा पता नहीं, अब तो बस घर जाने की तैयारी है बस तो इतना उसको फील हुआ क्योंकि उसने कोई जानबूझ के तो नहीं किया, अब गलती तो हो गई और फैलाने वालों ने बहुत फैला दी और बड़ा चढ़ाकर, और वहां तक पहुंच गई न्यूज। तो इतना डर गया तो अभी बस उसने सोचा कि अभी मिलूंगा और बस यहां से अब जाने की तैयारी है और कुछ नहीं। तो दादी से मिलने गया तो दादी ने उसको एक शब्द भी नहीं बोला, खाली इतना पूछा नाश्ता करके आए क्या, नहीं करके आए, उसको टोली दी, उसको बिठाया, प्यार से बात किया और बोले अब जाओ। मतलब उसकी कोई वर्णन ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं, कुछ ऐसे कुछ हुआ ही नहीं, बस ऐसे ही बुलाया क्योंकि देख लिया ना उसके चेहरे पर जो भय जो भाव, अगर ऐसी आत्मा को और भी कुछ बोल दे तो बस तो कुछ भी हो सकता है फिर तो तो गलती तो हुई परंतु ऐसा प्यार और स्नेह मिला तो ही तो वहां टिक गया और हमेशा के लिए रह गया वहां पर, नहीं तो ये सेवाधारी था वो तो चला गया होता था।
99 में नीतीश कुमार भाग के चढ़े थे स्टेज पर, तो दादी ने बड़े प्यार से सौगात लेके अगले दिन भेजा था।
तो किसी की गलती को देखना, उसको बड़ा चढ़ाकर इधर उधर फैलाना एक तो ये, या फिर वैसे के वैसे फैलाना, या इधर एक दो को बताना और बताना कि किसी को बताना मत ये, ऐसी बात तो है पर बताना मत किसी को, वो भी दूसरों को थोड़ा और थोड़ा सा चेंज करके वही करो, किसी को बताना नहीं। तो किसी की गलती को बाबा ने बहुत अच्छा दिया है यहाँ पर, बड़े भाइयों से मुलाकात नहीं, चार धाम से मुलाकात, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, हॉस्पिटल और शांतिवन, पांचवा छोटा ऐसा बाबा ने शायद म्यूजियम के लिए बोला है या पीस पार्क के लिए बोला। तो चार धाम के लिए ये होमवर्क दिया है 3 मास का, अखंड स्वराज, अटल स्वराज, निर्विघ्न स्वराज। तो उसमें अगर कोई गलती करता है तो उसकी गलती को समा देना, उसके भी कहा बाबा ने प्यार से वाइब्रेशंस देना, प्यार से वाइब्रेशंस देकर समा देना। तो ये एक बहुत अच्छी धारणा है, कोई कुछ करता है तो वो राज के राज रह जाए बस हमारे पास, इधर उधर 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 फैलना चाहिए, हमारे द्वारा तो नहीं फैला, एटलीस्ट कोई दूसरा फैला है वो दूसरी बात है, पर हम निमित्त ना बने उसको, उस बात को फैलाने की। तो यहां पर ही मुरली पूरी हुई, फिर दादियों से मुलाकात है, वो भी बहुत अच्छी पावरफुल पॉइंट से वहां पर बाबा ने दादियों को इतना अच्छा कहा कि आपके मन में जो तीव्र पुरुषार्थ का संकल्प उत्पन्न होता है उससे क्या होता है, दूसरों को भी बल मिलता है चलने का, बल जो दिल शिकस्त है उनको बल मिलता है और उमंग भरता है दूसरों में, साकार में स्तंभ हो, क्या कहा, साकार में स्तंभ हो जिनको देखकर दूसरे चल रहे हैं, जिनके पीछे दूसरे चल रहे हैं, साकार में स्तंभ हो, कितनी अच्छी बात भाई। तो केवल ये दादियों के लिए नहीं, जो हमारे मन में अगर तीव्र पुरुषार्थ का संकल्प अगर उत्पन्न हो रहा है ना तो कई आत्माओं का उससे कल्याण हो, हमारे मन में अगर संकल्प जैसा दादियों के लिए कहा वो हमारे लिए नहीं, तीव्र पुरुषार्थ का संकल्प श्रेष्ठ पुरुषार्थ का संकल्प। चलो हमसे कुछ होता नहीं परंतु संकल्प तो कर रहे, पॉजिटिव तो है, हिम्मत तो रख रहे थोड़ी बहुत, हमें कुछ करना है, इतना भी करो तो मदद तो मिलेगी और दूसरों दूसरी आत्माओं में भी बल भरेगा। बाबा ने कहा इनको आपको मुबारक क्या दू, आपको बाप दादा दुआएं दे रहे हैं दादियों से मुलाकात में, दुआ मुबारक क्या दू, दुआएं दे रहे और ये दुआएं से ही बहुत 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 आगे बढ़ रहे। तो पूरी मुरली का सार राजा कैसा होना चाहिए, उसमें कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। ये एक दूसरा चिंतन है, कंट्रोलिंग पावर किस किस में, क्या क्या चीज हमको कंट्रोल करनी है, इसको थोड़ा बाजू रख के हम इसमें फोकस करते हैं, किस किस बात को कंट्रोल करना है। आज की मुरली में गुस्से की बात है ना, बच्चा गुस्सा करता है तो उसको बांध दो, ऐसा नहीं कि वो बड़ा होकर तुमको माँ बाप को बांधे, ऐसा नहीं होगा। और ये भी बोला ना तो मन में जो आवेग उत्पन्न होता है किसको कंट्रोल करना है, सबसे पहले तो व्यर्थ संकल्पों को, निगेटिव संकल्प को, विकारों के संकल्प। चलो वो तो छोड़ दिया पर फिर भी कलयुग है, उसका प्रभाव है, फिर भी बीच बीच में उत्पन्न हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य धारण करने के बाद काम की जो शक्ति है अगर उसको रूपांतरण नहीं किया जाए तो वो अभिव्यक्त होती है, क्योंकि शरीर में सेक्सुअल हार्मोन्स और वो सारी बातें हैं और संसार का जो वातावरण है वो वैसा ही विकारी वातावरण है, उसके लिए केवल एक छोटा सा ट्रिगर की आवश्यकता है, कोई चित्र, कोई पोस्टर, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, छोटी मोटी चीजें, कोई मैगजीन, इतनी आवश्यकता, कोई एडवर्टाइजमेंट, इतनी ट्रिगर, एक स्टिमुलस छोटा सा उसका आवश्यकता है तो वासना बाहर आ जाती है। ज्ञान योग इधर वो इतनी तीव्र है, प्रबल है, शक्तिशाली है, द्वापर से अब तक चली है, ऐसी नहीं चली जाएगी, उसके लिए तो बहुत कार्य करना पड़ता है, चाहे वो कितने भी साल का कोई हो, 40 साल का कोई ज्ञान में हो या 50 साल का ज्ञान में हो, जरूरी नहीं है कि वासनाएं समाप्त हो जाए। तो आवेग जो होते हैं ना उनको कुछ इमरजेंसी कंट्रोल होनी चाहिए हमारे पास, जैसे कोई पेशेंट सीरियस होता है तो इमरजेंसी ड्रग देते हैं ना इंजेक्शन, वैसे ही मन में एकदम तीव्र तूफान उत्पन्न हो जाए तो वहां पर भी कोई इमरजेंसी ड्रग चाहिए, फिर तुरंत दे दी और शांत, वहां फिर ये छोटे मोटे संकल्प काम नहीं करेंगे, मैं महान आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो गए एक तरफ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, सब एक तरफ, कुछ तो ऐसा उस टाइम पे चाहिए कि इमरजेंसी हो, फिर जैसे क्या वो बताओ, इमरजेंसी कंट्रोल क्या है, सब मरे, थोड़े पावरफुल संकल्प लाने पड़ेंगे,
इमरजेंसी
मतलब इमरजेंसी वासनाओं के संकल्प, काम विकार के तीव्र संकल्प उत्पन्न होता है किसी के मन में, उस टाइम पे इमरजेंसी क्या करना है। एक किसी के प्रति घृणा का संकल्प उत्पन्न होता है, किसी ने हमारे साथ बुरा किया, तीव्र घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, बदले का भाव उत्पन्न हो रहा है मन में, ये सब इमरजेंसी से अध्यात्म के, हाँ वही और क्या क्या इमरजेंसी से, ये सब बहुत पावरफुल इमरजेंसी से, काम कृता, क्रोध, अहंकार कि हमको अपमान की फीलिंग आ जाना,
इंसल्ट
कोई इंसल्ट कर दे और वो चार लोगों के बीच में किए तो ठीक, 100 लोगों के बीच वो सामने कर दे तो सबके सामने कोई हमारी इंसल्ट कर दे कि तुमने यही सिखाया क्या, यही करने यहां आए थे, यही करने आए थे तो उधर जाके करना चाहिए था, यही सिखा के भेजा तुमको यहाँ,
अपने आप भले कुछ ना करे, हमारा थोड़ा समय कुछ होगा कि ये 2 बजे उठता
है, निवासियों का भोजन उधर जाओ, इधर बीच में
बोल, ये ऐसा कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी सिचुएशन से ही अपमान हो जाए, इंसल्ट, तीव्र बदले की भावना उत्पन्न हो जाए, काम विकार उत्पन्न हो जाए, क्रोध उत्पन्न हो जाए, ऐसा लगे अभी जाके उसने हमको कहा ना, जब तक मैं कहूंगा नहीं कुछ तो मुझे करना ही है, ऐसे कैसे, हम ऐसे थोड़ी ना है, हम भी इधर बहुत समय से, हमारी भी जड़ें थोड़ी अंदर है, हमारा भी कुछ है इधर स्थान, हमारी भी पहचान है,
खानदानी
तुम्हारी बहुत पहचान है तो क्या हुआ, हमारी भी है कुछ पहचान, हम भी लगाएंगे फोन इधर को उसको, देखते हमारा कुछ
इमरजेंसी ड्रग्स
नहीं, पहले और इमरजेंसी बताओ ड्रग्स बाद में इमरजेंसी तो बहुत है, बीच बीच में आती रहती है इमरजेंसी,
कोई ब्लेम कर रहे हैं
कोई, हाँ ये सबसे पावरफुल इमरजेंसी, कोई दोष तुमने ये किया है, उसमें भी सबसे खतरनाक ब्लेम पवित्रता के बारे में अगर कोई लगा दे तो वो तो एकदम हाईएस्ट इमरजेंसी है, उसमें क्रोध क्या सब कुछ आ जाएगा, उसमें जो होगा ना हिंसा तक आ जाएगी, स्थूल हिंसा जिसको हिंसा कहते हैं वो तो डबल लाइन तक तो बहुत दूर की बात है, छोड़ दो उसको, अभी तो बस पकड़ के मारने की बात है, वो भी हुआ है, सब हुआ है, नहीं कुछ किया नहीं है उसके बाद ही दोष लगाया है,
तभी होगा कि ब्लेम लगा और एग्रेसिव हुए, तभी होगा जब कर्म किया होगा,
अहंकार तो उसको
नहीं किया है कुछ भी, परंतु आपके मैं को चोट लगाई है जबरदस्त, आपने किया कुछ नहीं है परंतु फिर भी चोट लगाई है, अपमान किया है, वहां पर मैं का प्रश्न है, यहाँ पर अब अहम का प्रश्न है, परंतु इसमें दूसरी सूक्ष्म बात वो तो उत्तर में है कि अगर हमें संपूर्ण विश्वास है सत्य पर, सत्य को किसी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इतना विश्वास भी तो चाहिए, वो डोल जाता है ना ऐसे कंडीशन में, कोई सेंटर पे रहने वाला कोई कुमार है उस पर चोरी का आरोप लगा दिया जाए, अब इतने सालों से रह रहा है, अचानक बहन जी कहती है कि तुमने चोरी किया, अब बोलो क्या करेंगे, अब उसके पास कोई साधन नहीं है बताने के लिए, कोई तथ्य नहीं है कि कैसे कि मैंने नहीं किया, अब वही लोग कह रहे हैं कि जो बड़े हैं वो कह रहे हैं, अब और क्या कहे कि ये तुमने ही चोरी की,
क्या एक्सेप्ट कर ले,
नहीं मैं वही कह रहा हूँ, ये अभी लिस्ट है इमरजेंसीज की, अगर तो करना क्या है वो बाद में बात है, वो मेडिसिन है ड्रग है, अगर एक्सेप्ट हमने कर लिया तो भी उसमें भी प्रॉब्लम, ये ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है कि जिसमें इमरजेंसी, फिर और एक इमरजेंसी पुराना कोई संस्कार बचपन का, स्कूल लाइफ का, कॉलेज लाइफ का, वो अचानक आ गया, ज्ञान के पहले का,
डिपार्टमेंट इंचार्ज बदल दे,
डिपार्टमेंट ही बदल, या फिर आपको ऐसी कोई बीमारी हो गई, एक महीना हो गया ठीक ही नहीं हो रहे हो, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, पंडुभवन में ऐसे एक भाई था कि जिसको एक डेढ़ महीना एक बीमारी चली, उसके इंचार्ज तथाकथित महारथी, उसने कहा अगर होता नहीं तो घर जाओ, सीधा बोल दिया, अभी वो भाई कितने सालों से इधर है, बहुत मतलब पूरा परिवार से लेके सब कुछ उनके ज्ञान में, और बहने सेंटर इधर उधर सब जगह, ये भी इमरजेंसी है, बाकी चीज को तो आघात को सहन कर सकती है आत्मा, अगर कोई ये कह दिया कि नहीं होता है तो जाओ घर,
प्रॉमिस तोड़ दे लो,
हाँ
समर्पित करूंगा 4 साल रखा,
हाँ फिर उसके बाद घर, ये बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी इमरजेंसी सिचुएशन है, अभी इसमें क्या किया जाए प्रश्न ही, अभी मेडिसिन इमरजेंसी ट्रीटमेंट उधर तो इंजेक्शन देते आईसीयू में भर्ती करते हैं,
क्या ही धोखा दे दे,
धोखा कोई धोखा देते जिस पे हमने बहुत विश्वास किया और अपने जीवन की सारी बातें बता दी, उसने भी बोला उसने भी बताया हमने भी बताया और वही एकदम शत्रु बन गया,
जितना भी बताया उसी को बताया,
नहीं शिव बाबा नहीं मनुष्य
नहीं मतलब जो भी जीवन का कहानी सिर्फ बाबा बताए उसके बाद सेकंड में
उसी को बताए, हाँ तो बस उसी ने धोखा दे दिया, अब क्या करें, ये सारी की सारी इमरजेंसी है यहाँ पे, बहुत ही पावरफुल, और ये ऐसी इमरजेंसी की कि आसपास कोई है नहीं उत्तर देने के लिए और भगवान मौन बैठा है उस समय, तो सर फोड़ो कुछ भी करो, बाबा बोलने को तैयार नहीं है, संपूर्ण साक्षी भाव,
भगवान चाहता है कि परिस्थितियां आए इनके पास,
अब क्या करे, अब ये बताओ ये सारी परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है, हम अकेले हैं, ना किसी को बता सकते हैं, ना किसी को पूछ सकते हैं, बाबा के कमरे में बैठ के योग कर सकते हैं, बुद्धि भटकती है, योग लगता नहीं, अब क्या करें, क्या क्या किया जा सकता है, चलो वो तो है, वो तो ज्ञान की
पॉइंट, विकार वश कोई विचार आ रहा है तो व्यर्थ वाली चीज ला रहे, मतलब उससे कम पड़ा,
जैसे एक बार कहा था ना कुछ तो एक अपोजिट विचार उत्पन्न करना पड़ेगा, जैसे एक व्यक्ति है जो दारू पीता है रोज पीता है और कहता है कि दारू जब बहुत पी लेता हूं चारों तरफ सांप ही सांप नजर आते हैं, लोग उसको कहते हैं सांप, वो सांप सही थोड़ी ना, पर उसके लिए तो सही है, वो उसको तो बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि सांप ही दिख रहे, पर उसने एक इलाज किया, फिर एक पिंजरा लिया उसमें मुंगूस नेवला होता है ना, वो नेवले को बिठाया और वो लड़की घूमते रहता है, फिर सब जगह जहां सांप दिख रहे हैं यहां वहां घूम रहा है, यहां वहां घूम रहा है। तो लोग उस किसी ने पूछा कि भाई ये पिंजरे में क्या है, वहां नेवला। बोला नेवला क्यों, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर में चढ़ जाएगी और फिर सांप ही सांप नजर आएंगे। तो वो उसको कहता अरे वो सांप तो झूठे है, तो कहता ये नेवला भी झूठा है। एक इमेजिनेशन के विपरीत नया इमेजिनेशन को खड़ा कर दिया उसको काउंटरैक्ट करने के लिए, उसको शक्तिहीन बनाने के लिए एक नया बना दिया। काम विकार के संकल्प आ रहे, सबसे पहले सत्संग जो तीव्र पुरुषार्थियों का ग्रुप है उसके बीच में चले जाओ, जहां ज्ञान की चर्चा हो रही है वहां चले जाओ, जो बड़े हैं उनके पास चले जाओ, जिसको आप लगता है इसमें पवित्रता की धारणा है उन आत्माओं के पास चले जाओ, ऐसे वॉकिंग चले जाओ, वॉकिंग लंबा यहां से चले जाओ पांडव भवन वॉकिंग सीधा, कुछ लगा के कोई गीत संगीत या फिर कोई कमेंट्री या कोई क्लास सुनते सुनते रूम पे सबसे पहले निकल जाओ, वहां से जो रूम पे हो जहां पर भी वहां से हटो और चलना चालू सीधा वॉकिंग। वो वॉकिंग करते 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 वो ढीला हो जाएगा, स्नान कर लो, या फिर ये काम के लिए बता रहा हूं, स्नान वॉकिंग या फिर भोजन बनाना चालू करो या भोजन खाना, वो संकल्प से मुक्त होने के लिए। वो संकल्प इतना जल्दी से छोड़ेगा नहीं, एक तो ये काम, फिर उसके बाद है क्रोध। क्रोध के जब संकल्प आए तब क्या कर, स्वयं को कमेंट्री देना पड़ेगा कुछ बैठ के, या कुछ ऐसी अच्छी चीजें जो संसार में भी सिखाते हैं, कोई फूल को देखो, इमेजिनेशन करो, जैसे उसने नेवला रखा अपोजिट एकदम, तो यहां पर भी क्रोध के अपोजिट है प्रेम, प्रेम के सारे संकल्प, या फिर जो हमको लगता है ये प्रेम में ही आत्मा है, जैसे दादी का ही देखो बस, चित्र के सामने बैठ जाओ या इमेजिन करो, विजुअलाइज करो कि ये है वो,
उन्होंने इतना सहन किया हम भी करें,
हम भी करें, कितना कुछ सहन नहीं किया सबने, बहुत सहन किया, अरे उनके यहाँ का ही छोड़ो, संसार में जो धर्म स्थापक आए हुए उन्होंने कितना सहन किया, बुद्ध को लोगों ने पत्थर मारे, जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटका दिया, वो मंसूर को मार दिया, वो सुकरात है सोक्रेटिस जिसको कहते हैं उसको जहर पिला दिया, जितने लोग ऐसे आए हैं संसार में महान आत्मा है सबको कुछ ना कुछ किया है लोगों ने, ऐसे थोड़ी छोड़ दिया, उसके सिवा महान बने भी नहीं वो, तो सहन तो सब करना पड़ेगा
बाबा,
और बाबा की आज्ञा है सहन करो, इसके लिए क्रोध का कोई प्रश्न
नहीं, शक्ति जुड़ी है,
शक्ति जुड़ी है क्योंकि श्रीमत है वो, इसके लिए नहीं कि वो उसको लगे कि भाई हमने सहन कर लिया हम चुप बैठ गए हम तो गलत ही है, ये उसका अर्थ नहीं होता, क्योंकि परमात्मा आज्ञा है ये इमरजेंसी साधन है। इसमें फिर से वही वॉकिंग वाला, फिर से गीत वाला, बाबा ने तो कभी डांस करो बाथरूम में डांस करो, ये करो स्थूल
बाजे
कुछ तो करो कि जिससे उस संकल्प से मुक्ति हो जाए, दोष लगा दे कोई कि तुमने ये किया है, वहां वही फिर वही हमारा सत्य में विश्वास कितना। एक साधु था जिसको लंदन में था, उसके ऊपर मर्डर का ये कर दिया, उसको 22 साल की सजा दे दी गई, 20 साल के बाद ये आया फैसला दूसरा कि मर्डर करने वाला तो कोई दूसरा ही था, ये तो गलती से उसको डाल दिया, बेचारा साधु जवान 20 साल गए, उसको कहा चलो बाहर, वो बोले अभी रुको 2 साल और रुकता, मेरी अच्छी साधना हो रही है अंदर वो तो मुझे पहले ही पता था कि मैं तो ये मर्डर की क्या बात है, मैंने तो आज तक किसी को भी नहीं मारा, परंतु अगर मेरे सामने परिस्थिति आई है अगर किसी ने दोष दिया है इसका मतलब ये मेरे ही किसी और जन्म के कर्म, किसी और जन्म के पाप है कर्म है कुछ तो है, वो हिसाब किताब इसके लिए तो नहीं तो क्यों करेगा कोई, कुछ तो है वो मेरा ही है, चलो इस जन्म का नहीं है किसी और जन्म का है, मैंने भी ऐसा ही दोषारोपण किया होगा उसमें, हम भी कभी राजा होंगे किसी राज्य के तो किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण किया होगा और वहां के जितने लोग थे सब मर गए होंगे भूखे, अब वही हमारा इंचार्ज या फिर साथी या फिर और कुछ डिपार्टमेंट में बन के आया तो कुछ तो करेगा, हम जब साहूकार थे तो इतना लगान ली थी कि लोग बेचारे वो गरीब किसान मर गया था, उसकी पत्नी भी मर गई थी बच्चे भी मर गए थे, पर हमने बिल्कुल छोड़ा नहीं था, तो ऐसे मेरे को चाहिए
जैसे
हाँ, नहीं तो गुलाम बनो, ऐसा सब कुछ किया था, वही आत्मा आई है आसपास फ्रेंड सर्कल में, फेसबुक के जितने फ्रेंड्स हैं उसमें ही है कहीं ना कहीं, व्हाट्सएप के ग्रुप में है वो, एक 40 ग्रुप में से एक है वो, कुछ ना कुछ तो करेगी, तो ये सारी बातें वहां लानी है, इस ड्रामा कल्याणकारी, यहां कल्याण हो नहीं सकता, जो हो रहा है वही सत्य है, भगवान को पसंद है हमें भी पसंद आना चाहिए। ड्रामा की जितनी 10-15 पॉइंट है वो सारे रिवाइज कराना,
मुझे पास होना है।
हाँ ये पेपर है, पेपर आगे बढ़ने के लिए आते हैं, जिसको पास होना है तो ये सारी चीजें वहाँ। और इमरजेंसी में क्या करेंगे?
इमरजेंसी में मैं कई बार कंपेयर करते अपने आप को, हमारी लाइफ क्या थी और बाबा ने कितना कुछ।
हाँ, उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, ये पर होगा तभी जो पहले से अभ्यास होगा, क्योंकि पहले से अगर कुछ भी अभ्यास नहीं और अचानक परिस्थिति आ गई तो फिर तो गए पूरा खलास। यहाँ रोज का अभ्यास इसके लिए तो जरूरत है, ये जो चर्चा हम कर रहे हैं कि इसकी क्या जरूरत है, आराम से बैठो कमरे में हीटर लगा के सो जाओ, क्या जरूरत है कुछ ज्ञान चर्चा करने की? ज्ञान चर्चा ही इसके लिए है, इमरजेंसी के लिए। अभी यहाँ आर्मी, सीआरपीएफ और एयरफोर्स तीन है माउंट में, वो लोग देखा होगा ना कैसे भागते रहते हैं, अभी कहाँ कोई युद्ध हो रहा है, क्यों करते हैं, तैयार रहना पड़ता है उनको। तो हमारे जीवन में भी कब कौन सी परिस्थिति आ जाए हमको पता है? अभी 10 दिन के बाद क्या परिस्थिति आने वाली है पता है? ऐसी सोचो, आज से 10 दिन के बाद एक बहुत ही खतरनाक पेपर आपके जीवन में आने वाला है, आपको आज से भविष्यवाणी कर दी, क्या करोगे बोलो? सीधा योग करने बैठ जाएंगे दिन रात, या फिर ज्ञान मनन में बैठ जाएंगे, या कुछ तो करेंगे, ऐसे शांति से नहीं बैठेंगे। अगर बता दिया जाए कि एक ऐसा पेपर आने वाला है कि जो आज तक आया नहीं है, इतना खतरनाक पेपर है, ये सारी इमरजेंसीज में सबसे पहले तो हमारे पास कुछ रूटीन भी हमारा चलता रहे पुरुषार्थ, ताकि हम इमरजेंसीज में एकदम पावरफुल रह सके। रूटीन में ही पावरफुल नहीं, रूटीन में ही ज्ञान बुद्धि में नहीं है तो इमरजेंसी में कहां से ज्ञान बुद्धि में रहता है? फिर तो जैसे संसार के लोग वही ये हो जाते, फिर वो ज्ञान भी इन सब एक तरफ रह जाता है, उसका कोई लेना देना नहीं है, पूरा मर्ज हो जाता है और वो सारा बदला और वो सब कुछ आ जाता है। झगड़े भी हुए बताऊंगा, यहां पर भी हुए, इधर भी हुए, सब जगह ज्ञानी आत्माओं के, क्या कहे उसको, सब होगा, क्योंकि अज्ञान तो निद्रा है ना, वहां तो सब कुछ होता है। इसके लिए ज्ञान इमर्ज रहना चाहिए। तो ये सारी जो इमरजेंसी सिचुएशंस है, इसके लिए हमें स्वयं को तैयार रखना है। वो विनाश के लिए तैयारी और घर जाने के लिए तैयारी वो दूसरी बात है, पहले इसके लिए तो तैयारी करो। तो ये कल की मुरली में सबसे पहला तो राजा कौन, सहज स्वराज्य खंडित क्यों होता है, उसके लिए ये 5-6 माया के स्वरूप जो आक्रमण करते हैं उसका निवारण बाबा ने बताया कि कंबाइंड स्वरूप को इमर्ज रखो, कंट्रोलिंग पावर की सारी शक्तियों को धारण करो, और तीसरा दरबार, रोज दरबार लगाओ, और वो समटाइम और समथिंग को हटा दो डिक्शनरी से, फिर हाथ ऊंचा कर रहे हो तो उसकी लाज रखो, लॉ एंड ऑर्डर पे चलाओ, और ये 2-3 बातें, और वो 3 मास का होमवर्क, बीच में 15 दिन के लिए भी ये सब कहा है, ये 15 की है ना, एक लास्ट टर्न और बाकी है 30 का, और कोई गलती करता है तो उसको फैलाना नहीं है वायुमंडल में, क्या करना है उसको संभाल लेना है। तो यही मुरली अभी हम कल फिर सुनेंगे सुबह क्लास में, तो सुनते समय पूर्ण अटेंशन से सुनना है, एक बार सुन लिया उसके बाद में फिर से उसको दिन में 1-2 बार रिवाइज करना है, पढ़ना है, हो सके तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने उसके, कि इसमें होमवर्क क्या है, पॉइंट्स क्या है, 1, 2, 3, 4 ऐसे 10 पॉइंट निकाल लेना, और फिर वो बस इसको बाजू और उस पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना कि ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स है, तो उस मुरली का कुछ है, नहीं तो कितनी अव्यक्तवाणी आई और गई, क्या क्या था और क्या नहीं, कुछ खबर ही नहीं उसकी।
ध्यान है तो ज्ञान
तो ध्यान रहना चाहिए हमारा, ठीक है। तो अभी हम आगे का देखेंगे, या यही मेरे ख्याल से तो यही सैटरडे अच्छा है,
सैटरडे बहुत अच्छा है यार, आपको कंफर्ट
नहीं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, सैटरडे ठीक है, क्योंकि अभी तो मेरा चालू हो जाएगा ना।
अभी आपने कहा ना कि पांडव होम में एक महीने से ज्यादा की भाई बीमार था, क्या सिचुएशन में वो क्या करेगा?
हाँ, यहाँ पर फिर वही वाली बात है, ज्ञान चाहिए, ज्ञान कितना है हमारे पास, हर परिस्थिति में अचल रहने के लिए एकमात्र साधन है ज्ञान, योग तो वहां तो खत्म हो जाता है, वहां पे ज्ञान की हमारी कितनी साधना है, ज्ञान हमने कितना
तो रहा, लेकिन हैव टू गो।
हाँ नहीं, वो तो बता रहा हूं मैं, वो जो होगा वो परिस्थिति में उसको क्या करना है वो तो उसको इंडिविजुअल डिसीजन, उसका व्यक्तिगत निर्णय होगा वो, परंतु वो ज्ञान के आधार से अपनी स्थिति को अचल रख सकता है, ड्रामा पे निश्चय जो हो रहा है उस पे निश्चय, या फिर ऐसा भी नहीं कि उसकी बीमारी ठीक ही नहीं होगी, वो तो ठीक भी हो गया, वो तो अभी कहीं इंचार्ज भी है, वो तो मैं बता रहा हूँ एक उदाहरण है उसी के जीवन का, उसी ने बताया होगा बहुत पहले की बात, परंतु ऐसी सारी परिस्थितियां आ सकती है कि बड़े बड़े योगियों भी उसके भी आंखों से आंसू आ गए थे, अगर बताऊं नाम तो बोलेंगे ये और रोने वाला, हो ही नहीं सकता है, परंतु ऐसी परिस्थितियों में भी आंसू आ जाते, ऐसी ये विकराल कठोर कठिन परिस्थिति है। तो इन सब में अचल अडोल रहने के लिए दिन भर ज्ञान की साधना और योग, बाबा से हमारा कितना कनेक्ट, वो लिंक कितनी पावरफुल है, साथ का अनुभव प्रैक्टिकल में हो, यहां बहुत सारे संकल्प है, अगर भगवान हमारे साथ है, भगवान ने हमको रखा है, कौन निकाल सकता है, इस तरह के स्वतः ही संकल्प इमर्ज होंगे क्या करना है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है।
यहाँ के विजय भाई को भी यहाँ के बहुत लोगों ने बोल दिया जाओ, फिर भी उसको बिल्कुल
इधर ही
यहाँ के जो कोई
अरे तुमको रखा किसने, चुना किसने, कोई मनुष्य ने चुना है क्या, यहाँ पे ज्ञान चाहिए, फिर बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता है, और बहुत
हमारे विजय भाई बहुत अच्छा लग रहा है, किसी भी परिस्थिति में जो होगा ठीक
है, किसी सेवा कर रहा है, इसके आगे कुछ निंदा कर रहा है, उसकी सेवा कर रहा है।
तो ये सारी साधना है। दूसरा, अभी नेक्स्ट सैटरडे तक ये हफ्ते में जितने वरदान और जितने स्लोगन, में जो टाइम हो गया, वरदान स्लोगन और आने वाले संडे की मुरली कौन सी है मुझे पता नहीं, वो ढूंढ लो कौन सी है, और उसकी और बाबा के बीच में अव्यक्तवाणी चलेंगी, या ये अव्यक्तवाणी और वो मुरली आने वाले संडे की, वो हम अगले सैटरडे डिस्कस करेंगे। अच्छा, वो तो एक ही बार हुआ है, चार पांच महीने पहले हुआ था, वो चार एपिसोड थे, चार थे वो, चार बस। हाँ हाँ,
आप उसमें थोड़े
वो एक ही बार था, वो हो गया, वो
अभी होता है,
अभी नहीं हो गया, वो चार थे बस।
तो मैंने देखा वो चेयर थोड़ी
वो चार, बस वो चार ही थे, उसके बाद नहीं।